آگے سبق دیکھیے بھائی. لضرورتی اي لضرورة وزن الشعر او رعاية القافية فإنه إذا وقع غير المنصرف في الشعر فكثيرا ما يقع من منع صرفه فكثيرا ما يقع من منع صرفه انكسار يخرجه عن الوزن او انزحاف يخرجه عن الثلاثة اما الاول فكقوله شعر صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. بھئی گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ غیر منصرف کو منصرف پڑھنا بھی جائز ہے ضرورت کی وجہ سے یا تناسب کی وجہ سے بھئی. اور پھر یہاں اشکال ہوتا تھا کہ صاحب کافیہ تو یجوز لے کر آئے ہیں اور آگے جو ہے ذکر کیا کہ یہ غیر منصرف کو منصرف پڑھنا جائز ہوتا ہے یا تو ضرورت شعری کی وجہ سے یا تناسب کی وجہ سے, اور ضرورت شعری کی وجہ سے تو یہ واجب ہوتا ہے کہ غیر منصرف کو منصرف پڑھا جائے. تو یجوزو کے اندر تو جانبین برابر ہوتی ہیں. ایک جب آپ کو کہا جائے کہ آپ کے لیے یہ کام جائز ہے, معلوم ہوا آپ چاہے کریں یا نہ کریں, دونوں صورتیں اس میں آتی ہیں. لیکن یہاں جو آگے تفصیل ذکر کی گئی کہ ضرورت اور تناسب کی وجہ سے یہ صرف جائز ہوتی ہے, اس میں تو ضرورت کا ذکر آیا اور ضرورت کی وجہ سے تو واجب ہوتا ہے, تو یجوزو کا لفظ اس کو شامل نہیں. یجوزو کا لفظ اس کو یجوزو میں تو دونوں جانبیں برابر ہوتی ہیں, اور جبکہ ضرورت میں تو اس کا کرنا واجب ہوتا ہے, تو واجب یجوزو کے اندر داخل نہیں بھائی, واجب یجوزو میں داخل نہیں. تو صاحب جامی نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں پر یہ جو یجوزو آیا یہ یمکنوں کے معنی میں ہے, جائز ہے یعنی ممکن ہے, اور امکان جو ہے یہاں امکان عام مراد ہے, مقید بجانب الوجود, جس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں, لا یمتنع سے تعبیر کرتے ہیں بھائی, لا یمتنع سے. میں نے آپ کو بتلایا کہ امکان دو قسم پر ہے, ایک امکان عام اور ایک امکان خاص. پھر امکان عام کہتے ہیں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی, ایک ہے وجود ایک ہے عدم. اگر وجود ذکر ہے تو جانب مخالف یعنی عدم, معلوم ہوا عدم ضروری نہیں, اور اگر عدم ذکر ہے یعنی قضیہ سالبہ ہے تو پھر معلوم ہوا جب کہ عدم ممکن ہے, معلوم ہوا جانب مخالف یعنی وجود ضروری نہیں. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ امکان عام دو قسم پر ہے, ایک امکان عام مقید بجانب الوجود اور ایک امکان عام مقید بجانب العدم. امکان عام مقید بجانب الوجود جو ہے اس کو لا یمتنع سے تعبیر کرتے ہیں, اور امکان عام مقید بجانب العدم اس کو لا یجب سے تعبیر کرتے ہیں. اور قضیہ موجبہ کے اندر جب امکان کا ذکر آتا ہے تو اس سے امکان عام مقید بجانب الوجود مراد ہوتا ہے. مثلا میں نے کہا ہو سکتا ہے زیادہ آیا ہو, تو یہ دیکھو اس میں نفی نہیں ہے, یہ قضیہ موجبہ ہے, تو اس میں امکان عام مقید بجانب الوجود ہے, تو اس کی جانب مخالف کیا عدم, معلوم ہوا عدم ضروری نہیں. جب عدم ضروری نہیں, وجود چاہے ضروری ہو یا نہ ہو دونوں اس میں آ گئے, عدم بس ضروری نہیں ہے, عدم ضروری نہیں ہے, باقی وجود ضروری ہو یا ضروری نہ ہو. تو یہ امکان عام ہے بھائی. اور دوسرا ہے امکان خاص. امکان خاص کے اندر جانبین سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے, یعنی وجود بھی ضروری نہیں اور عدم بھی ضروری نہیں, اور اسی لیے اس کو امکان خاص کہتے ہیں کہ اس میں دو قیدیں آ گئیں, اور جتنی قیدیں بڑھتی جائیں چیز خاص ہوتی چلی جاتی ہے, اس کے افراد کم ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس کے اندر چونکہ دو قیدیں تھیں اس لیے اس کو امکان خاص کہا, اور امکان عام میں ایک قید ہوتی ہے ایک وقت کے اندر, اس لیے اس کو امکان عام کہا, وہ اس کے مقابلے میں عام ہے بھائی. اور پھر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ چیزیں بنیادی طور پر تین قسم کی ہیں بھائی, کچھ واجب ہیں کچھ ممتنع ہیں کچھ ممکن ہیں. تو جو واجب ہے اس کا ہونا ضروری وہ ہے یجبو, تو باقی دونوں وہ کیا ہوئے لا یجبو, تو لا یجبو کے اندر ممتنع بھی آ گیا اور ممکن بھی آ گیا. اور جو ممتنع ہے اس کو تعبیر کس سے کرتے ہیں, یمتنع سے, کہ وہ ناممکن ہے, تو باقی دونوں کس میں کیا ہو گئیں, لا یمتنع, لا یمتنع بھائی, اس میں دونوں صورتیں آ گئیں, واجب بھی اور ممکن بھی داخل ہو گئے. تو یہاں پر بھی امکان سے کیا مراد ہے, امکان عام مقید بجانب الوجود, کیونکہ یجوز صرفہ, कजिया मुजिबा है और कजिया मुजिबा में जब इमकान जिक्र हो तो वह इमकान आम मुकैद भी जानिबिल वजूद होता है और उसको ताबीर किससे करते हैं, लायम तनियों से, यानी नामुमकिन नहीं है। तो इमकान आम मुकैद भी जानिबिल वजूद है, मालूम हुआ आदम जरूरी नहीं, आदम आदम जरूरी नहीं और वजूद चाहे जरूरी हो या जरूरी ना हो दोनों इसके अंदर आ गए भाई। तो लिए जरूरत भी आ गया और लिए तनासुब भी आ गया, लि जरूरत में जरूरी होता है वाजिब होता है और लि तनासुब में जरूरी नहीं होता। तो यह जूजु किस माना में है, युमकिनों के माना में है यानी मुमकिन है। और कौन सा इमकान मुराद है, इमकान आम मुकैद भी जानिबिल वजूद मुराद है। उसके बाद सरफहू के बाद साहिब जामी ने आपको बतलाया था कि गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ करना जायज है। तो बतलाया कि भाई माना यह है कि मुनसरिफ करना नहीं बल्कि मुनसरिफ के हुक्म में करना जायज है, यानी मुनसरिफ वाला हुक्म देना इसको जायज है। हकीकतन यह मुनसरिफ नहीं बनेगा क्योंकि साहिब काफिया ने गैर मुनसरिफ की क्या तारीफ की कि गैर मुनसरिफ वो है जिसमें दो सबब पाए जाएं या एक सबब जो दो के कायम मकाम हो। तो अगर आप गैर मुनसरिफ पर जरूरत वगैरह की वजह से कसरा या तनवीन ले भी आए तो इस कसरे और तनवीन के लाने से वो दो इल्लतें तो नहीं खत्म होंगी। जब दो इल्लतें हैं तो साहिब काफिया की तारीफ के मुताबिक यह क्या है, गैर मुनसरिफ ही है। जबकि बाजों ने दूसरा जवाब दिया कि ये जो सरफहू है, सरफहू का लुगवी माना कर लें, इसका तर्जमा मुनसरिफ करना ना करें बल्कि इसका तर्जमा कर लें फेरना, एक हालत से दूसरी हालत की तरफ फेरना, और हुक्महू की हा जमीर राजे कर दें हुक्म की तरफ। वो जो गैर मुनसरिफ का हुक्म गुजरा, यजूजु सरफहू, जायज है फेरना उस हुक्म को, गैर मुनसरिफ के उस हुक्म को फेरना जायज है। यानी हुक्म तो है कि उस पर कसरा या तनवीन नहीं आएगा लेकिन उसको फेरना और कसरा और तनवीन को दाखिल करना यह भी जायज है। बात समझ में आ गई। अब आइए आगे देखिए भाई, कहते हैं लि जरूरती ऐ लि जरूरती वजन शिअरी और रियायतिल काफियती। तो गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ का हुक्म देना जायज है लि जरूरती, जरूरत की वजह से। अब जरूरत से क्या मुराद है, कहते हैं ऐ लि जरूरती वजन शेरी, वजन शेर की जरूरत की वजह से, और रियायतिल काफियती या रियायत काफिया की जरूरत की वजह से। कि रियायत काफिया रखने के लिए भाई, काफिया भाई अशार आप जानते हैं, अरबी अशार में जो शेर के आखिर में वजन जो है, हर एक कसीदा हो तो हर शेर के अंदर आखिर में वही वजन लाया जाता है, उसको काफिया कहते हैं। कसीदे में अशार का इख्तिताम एक जैसे हर्फ पर और एक जैसे वजन पर होता है, तवज्जो है, कसीदे के अंदर अशार का इख्तिताम एक जैसे वजन और एक जैसे हर्फ पर होता है। तो ये जो एक जैसा वजन सब शेरों के आखिर में आ रहा हो इसको कहते हैं काफिया, रियायत काफिया, यानी काफिया की रियायत रखी जाती है, काफिया का लिहाज रखा जाता है। और ये जो एक हर्फ आखिर में एक जैसा आता है इसको हर्फ रवि कहते हैं, इसका भी जिक्र आगे आने वाला है, हर्फुन रवियुन। ये जो शेर के बिल्कुल आखिर में जो हर्फ आए इसको क्या कहते हैं, हर्फ रवि कहते हैं। और ये तमाम अशार में एक ही जैसा आता है कसीदे के अंदर, जैसे सबा मुअल्लकात हैं भाई, सबा मुअल्लकात में इमराउल कैस जो है अपने मुअल्लके में कहता है, किफा नब की मिन जिक्रा हबीबी व मंजिली बिसिक्त लिवा बैन दखूली फहौमली। तो देखो हौमली ये वजन आया आखिर में, यह है काफिया, यह हौमली वजन क्या है, यह है काफिया। और यह जो लाम आखिर में आया यह है हर्फ रबी, ये क्या है, हर्फ रवि। अब पूरे कसीदे के अंदर वो इस वजन का भी लिहाज रखता है और इस लाम का भी लिहाज रखता है। मसलन अगला शेर देख लो, फतूजी हफल मिकराती लम याफुर अस्मुहा लिमा न सजत हा मिन जनूबियों व शम अली। देखो वहां क्या था, हौम अली, यहां क्या आया, शम अली। देखो वही वजन, वजन भी वही, और आखिर में जो लाम पहले शेर में आखिर में लाम मकसूर है, यहां भी क्या है, लाम मकसूर है। तो ये जो लाम है इसको क्या कहेंगे, हर्फ रवि कहेंगे। और जो आखिर में वजन आया उसको क्या कहेंगे, काफिया कहेंगे। तीसरा शेर देख लें भाई, तरा बार अल आरामी फी अरसातिहा वकीआनिहा का अन्नहा हब्बु फुलफुली का अन्नहा हब्बु फुलफुली। देखो हौमली शम अली फुलफुली। आप कहेंगे नहीं भाई फुलफुली में तो हरकतें अलग हैं। भाई बात वजने शेरी की चल रही है, वजने शेरी के अंदर मुतहर्रिक के मुकाबले में मुतहर्रिक आना चाहिए, साकिन के मुकाबले में साकिन आना चाहिए, हरकतें एक जैसी होना जरूरी नहीं है। हौमली देखो हा मुतहर्रिक और वह साकिन, फुलफुली देखो इसमें फा मुतहर्रिक और लाम साकिन, फिर हौमली मीम पर हरकत और आगे लाम मकसूर, और फुलफुली इसके आखिर में भी फा मुतहर्रिक और आगे लाम मकसूर है। बात समझ में आ गई। तो वजन शेरी के अंदर मुतहर्रिक के मुकाबले में मुतहर्रिक आता है, साकिन के मुकाबले में साकिन आता है, हरकतों का एक जैसा होना जरूरी नहीं है भाई। तो इसको रियायत काफिया कहते हैं। और ये जो शेर के आखिर में हर्फ आता है इसको हर्फ रवि कहते हैं, और इसी की निस्बत से कसीदे का नाम भी रखा जाता है। तो जैसे यहां पर हर शेर के आखिर में लाम आ रहा है तो इसको कहेंगे कसीदा लामिया, कसीदा लामिया, लाम वाला कसीदा भाई, यानी जिसके आखिर में लाम आ रहा है। इसी तरह अगर दाल आएगा तो कसीदा दालिया भाई, अगर ता आएगी तो कसीदा ताइया भाई, इसी तरह मीम आएगा तो कसीदा मीमिया भाई। तो ये हर्फ रवि के एतबार से कसीदे की निस्बत की जाती है इस हर्फ रवि की तरफ भाई। देखिए किताब पर कहते हैं अली जरूरती वजन शेरी औ रियायतिल काफियती, वजन शेर की जरूरत की वजह से और इसी तरह रियायत काफिया की वजह से फइन्नहु इदा वका गैरुल मुनसरिफ फि शेरी, इसलिए क्योंकि जब गैर मुनसरिफ शेर में वाकई होता है तो फकसीरम्मा, तो बसा औकात जो है या काउम मन सर्फ ही वाक होता है इसके गैर मुनसरिफ होने की वजह से। मीन अजलिया है, इल्लत बयान करता है, इल्लत बयान कर रहा है, कसीर अम्मा या काउम मन सर्फ ही, तो बसा औकात इस गैर मुनसरिफ की मन सर्फ की वजह से क्या वाक होता है, इनकिसार, उन इनकिसार का माना है टूटना, टूटना, तो उसमें टूटन वाके होती है, युखरिजुहु अनिल वज़्नी, जो उसको वजन से निकाल देता है। कसीदे के अंदर गैर मुनसरिफ आया तो उस गैर मुनसरिफ की वजह से उसका वजन टूट जाएगा भाई। बात समझ में आ गई। अच्छा इसी तरह आगे जिहाफ का जिक्र आ रहा है, अविन जिहाफ युखरिजुहु अनिस सलासती, जिहाफ याद रखो यह शेर के अंदर मखसूस जगहों पर खास किस्म का तगैयुर और तबद्दुल जो है उसको ज़िहाफ कहते हैं। आपने चूंकि ये फन अभी पढ़ा नहीं, पूरी तफसील तो यहां जिक्र नहीं की जा सकती, बस मुख्तसरन इतना याद रखें, शेर के मखसूस औजान होते हैं, इस वजन के अंदर बाज़ औकात मामूली सी तब्दीली करके एक नया वजन उसी में बना लिया जाता है। तो ज़िहाफ किसे कहते हैं, शेर के अंदर मखसूस जगहों पर मखसूस किस्म की जो तब्दीली है उसको ज़िहाफ कहते हैं। इसमें कभी यूं किया जाता है किसी हर्फ साकिन को हजफ कर लेते हैं, कभी कभार यूं करते हैं मुतहर्रिक को साकिन कर लेते हैं, और कभी यूं करते हैं मुतहर्रिक को हजफ कर लेते हैं। तवज्जो है, क्या करते हैं, कभी साकिन हर्फ को हजफ कर लिया, कभी मुतहर्रिक को हजफ कर लिया, कभी सिर्फ हरकत को हजफ किया। तवज्जो है, क्या किया जाता है, कभी हर्फ साकिन को हजफ कर लिया, कभी सिर्फ हरकत को हजफ कर लिया, और कभी मुतहर्रिक को हजफ किया, यानी दोनों चीजें हजफ कर दी, हर्फ भी हजफ हो गया और साथ हरकत भी हजफ हो गई। जैसे मसलन फाइलुन, फाइलुन इसके अंदर ये अलिफ साकिन है, कभी इसको गिरा देंगे, फाइलुन बन गया, क्या बन गया, फाइलुन, देखो एक नया वजन बना लिया। या जैसे मुतफाइलुन, मुतफाइलुन में ता पर देखो फतहा है, ता यानी मुतहर्रिक है, ता क्या है, मुतहर्रिक है, तो इस ता को साकिन कर दिया, मुतफाइलुन, बात समझ में आ, तो मुतफाइलुन बन गया, तो वो मुस्तफइलुन बन गया, गोया के मुतफाइलुन और मुस्तफइलुन दोनों का एक ही वजन है। बात समझ में आ गई। शेर के अंदर जो है जम्मा के मुकाबले में जम्मा, फतहा के मुकाबले में फतहा, कसरा के मुकाबले में कसरा, इस तरह नहीं देखा जाता, बस यह देखा जाता है साकिन के मुकाबले में साकिन आना चाहिए और मुतहर्रिक के मुकाबले में मुतहर्रिक आना चाहिए। तो मुतफाइलुन और मुस्तफ़ईलुन, देखो दोनों का एक ही वजन है, साकिन के मुकाबले में साकिन आ रहा है और मुतहर्रिक के मुकाबले में मुतहर्रिक आ रहा है। तो यहां तो बहरहाल हरकतें भी एक जैसी हैं, लेकिन चाहे हरकतें एक जैसी ना भी हों, बस सिर्फ साकिन के मुकाबले में साकिन आना चाहिए और मुतहर्रिक के मुकाबले में मुतहर्रिक आना चाहिए। तो शेर के अंदर ये जो मखसूस किस्म के तब्दीली की जाती है उसको ज़िहाफ कहते हैं। मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां की जाती हैं, उनमें से एक तब्दीली का नाम क्या है? ज़िहाफ है, ज़िहाफ। तो याद रखिए, जो ज़िहाफ है इसकी वजह से शेर के वजन में रवानी बरकरार नहीं रहती। उमूमन ज़िहाफ की वजह से शेर के अंदर वो रवानी और वो सलासत और वो तरन्नुम बाकी नहीं रहता। भाई मैंने बताया शेर के मखसूस औजान होते हैं, एक हर्फ इधर उधर हो जाए तो शेर का वजन टूट जाता है, लेकिन आप देखते हैं उन्हीं औजान पर हर शायर अपनी अपनी बात करता है। हर शायर एक चीज के बारे में शेर कहता है, दूसरा दूसरी चीज के बारे में, तीसरा तीसरी चीज के बारे में। तो बाज़ औकात शेर बनाते हुए शायर को कोई ऐसा लफ्ज नहीं मिलता कि जो पूरा शेर का वजन बरकरार रखा जा सके, तो वहां पर उनके लिए ज़िहाफ की गुंजाइश होती है। वो मामूली सा रद्दो बदल कर सकते हैं वजन में, लेकिन खास तरीके से, हर तरीके से नहीं, खास तरीके से उनको मामूली से रद्दो बदल की उसमें गुंजाइश होती है, जिसकी वजह से शेर का वजन बदलता जरूर है लेकिन शेर का वजन टूटता नहीं, खराब नहीं होता। उसकी वजह से सलासत और रवानी में कमी आ जाती है, अलबत्ता शेर का वजन फिर भी बरकरार होता है। अगर वो उसकी गुंजाइश उसको न देते तो फिर शायर के लिए वहां कोई लफ्ज उसको मिल ही नहीं रहा था, जो मुनासिब लफ्ज वो वहां लेकर आता। तो उसके लिए गोया यूं समझें कुछ उसको रुखसत मिल जाती है कि वजन में मामूली सी वो रद्दो बदल के साथ भी कह सकता है, लेकिन वो रद्दो बदल भी मैंने बताया खास किस्म का होता है, जिससे वजन थोड़ा बदलता है, टूटता नहीं है, खराब नहीं होता। तो इसको ज़िहाफ कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? ज़िहाफ कहते हैं। अच्छा देखिए भैया, फिर तर्जमा देख लें। कहते हैं फइन्नहु इज़ा वक़ा गैरुल मुनसरिफ़ फी शेरी, इसलिए क्योंकि जब गैर मुनसरिफ जो है वो शेर में वाक़े होता है, फकसीरम मा यक़ऊ मिन मनअ सर्फ़िही, तो बसा औक़ात इसके गैर मुनसरिफ होने की वजह से वाक़े होता है। क्या वाक़े होता है? इनकिसारुन युख़रिजुहु अनिल वज़्नी, यानी ऐसी कसर, ऐसी टूटन वाक़े होती है जो उस शेर को वजन से निकाल देती है। अव इन्ज़िहाफ़ुन, या उसमें ऐसा ज़िहाफ वाक़े होता है, युख़रिजुहु अनिस सलासती, जो उस शेर को सलासत से निकाल देता है। सलासत का माना है रवानी। अशआर में क्या होता है? खास किस्म की रवानी और तरन्नुम होता है। तो वो ज़िहाफ की वजह से वो वजन तो मसला नहीं टूटा लेकिन रवानी ना रही शेर की। अम्मल अव्वल, पहले की मिसाल, तो पहले की मिसाल कि जिसमें गैर मुनसरिफ को गैर मुनसरिफ पढ़ा जाता तो शेर का वजन टूट जाता, तो शेर के वजन को टूटने से बचाने की जरूरत की वजह से गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ा गया। जैसे अम्मल अव्वल, पहले की मिसाल, फका कौलिही, जैसे कि एक शायर का कौल है, शेरुन सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्यामि सिरन लयालिया। सुब्बा, सब्बा या सुब्बो के माने होते हैं उंडेलना, एक चीज पर पानी वगैरह डालना या कोई और चीज डालना। तो यहां डालने के माना कर लें, सुब्बत अलैया, मेरे ऊपर डाल दी गई, या यूं कहें मेरे ऊपर नाजिल हुई मसाइबुन। यह है महल्ले इस्तिशहाद भाई। यहां मसाइब यह गैर मुनसरिफ है लेकिन जरूरत शेरी की बिना पर इस पर तनवीन पढ़ी गई, क्योंकि अगर इस पर तनवीन नहीं पढ़ेंगे तो सारा शेर का वजन ही खराब हो जाएगा। सुब्बत अलैया मसाइबुन, मेरे ऊपर तकलीफें डाली गई, मेरे ऊपर बहुत सी तकलीफें डाली गई। लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्यामी, अगर वो डाली जाती दिनों पर, जो अय्याम हैं, दिन हैं, उन पर अगर ये तकलीफें डाली जाती, ये मुसीबतें डाली जाती, सिर न लया लिया, तो वो रातें हो जाते, वो दिन बदलकर क्या बन जाते? रात बन जाते, उनकी रोशनी खत्म हो जाती। भाई इतनी तकलीफें। यह हज़रत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का शेर है भाई, कि एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात के बाद वो कब्र मुबारक पर तशरीफ लाई तो वहां उन गम की कैफियत, बे इंतहा गम की कैफियत उन पर तारी थी, उस वक्त उन्होंने यह शेर पढ़ा कि सुब्बत अलैया मसाइबुन, मेरे पर इतनी मुसीबतें नाजिल हुई हैं, अगर ये मुसीबतें दिनों के ऊपर नाजिल होती तो वो दिन बदल कर क्या बन जाते, रात बन जाते, उनकी रोशनी ही खत्म हो जाती। भाई तो ये हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उस मौके पर पढ़े। तो फिर इसमें उलमा फरमाते हैं, बास कहते हैं ये इनका अपना शेर है और बास कहते हैं ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का शेर है। भाई माना समझ में आ गया। आगे देखिए, कहते हैं वह अम्मसानी, और दूसरा जो है कौन सा दूसरा, जिसमें जिहाफ से बचने के लिए गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ा गया। अगर गैर मुनसरिफ पढ़ा जाता तो शेर में जिहाफ वाके होता, तो यह दूसरे की मिसाल है जिसमें जिहाफ से बचने के लिए गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ा गया। पहले में था वजन टूट जाता अगर इसको गैर मुनसरिफ पढ़ते, और दूसरा जिहाफ जो है जिसमें गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ा गया है, तवज्जो है, अगर उसको गैर मुनसरिफ भी पढ़ा जाता तो वजन फिर भी नहीं खराब होना था, वजन वजन फिर भी खराब नहीं होना था, अलबत्ता का वो जो शेर था वो सलासत से निकल जाता, उसमें वो रवानी न रहती। भाई कहते हैं दुआ अम्मसानी, दूसरे की मिसाल फका कौली ही, जैसे के शायर का कौल है शेरुन आद जिक्र नौमान लना इन जिक्र हुल मिसकुमा कर्रतहू यतज़व्वउ, आद आद युईद के माने हैं लौटाना, जिक्र नौमान, नौमान जो है इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्ला का नाम है, अबू हनीफा कुनियत है और नाम क्या है नौमान। भाई आद जिक्र नौमान लना, शायर कहता है कि हमारे लिए नौमान यानी अबू हनीफा रहमहुल्ला का जिक्र लौटाओ, यानी दोबारा उनका जिक्र करो, इन न जिक्रहू हुअल मिस्कू, के बेशक उनका जिक्र जो है हुअल मिस्कू, वो मुश्क खुशबू है। आप जानते हैं मुश्क सबसे कीमती खुशबुओं में शुमार होती है, हिरन के नाफे से हासिल की जाती है, तो बहुत कीमती खुशबू है और सबसे आला खुशबुओं में शुमार होती है। तो कहता है शायर इन न जिक्रहू हुअल मिस्कू, कि इमाम साहेब का जिक्र जो है वो तो मुश्क खुशबू है, मा करर तहु यतज़व्वउ, जिस कदर तू उसको उसका तकरार करेगा यानी जितना उसको तू बार बार दोहराएगा, यतज़व्वउ तज़व्वउ का माना है खुशबू का फूटना, खुशबू का फैलना, तुम जिस कदर उनका जिक्र करोगे उसी कदर खुशबू फैलती चली जाएगी। याद रखो उलमा फरमाते हैं कि बड़े औलिया अल्लाह के जलीलुल कदर औलिया का जिक्र किया जाए जिस मजलिस के अंदर, तो वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, अल्लाह की रहमत बरसने लगती है। बात समझ में आ गई। अल्लाह के औलिया का जिक्र, अल्लाह के खास खास बड़े औलिया, उनका जिक्र जिस मजलिस में किया जाता है, उनकी बातें दूसरों को सुनाई जाती हैं, इस तरीके से उनका जिक्र किया जाता है तो वहां अल्लाह की रहमत बरसती है। भाई तो शायर कहता है आद जिक्र नौमान लना इन जिक्रहू, कि हमारे लिए नौमान का जिक्र फिर दोहराओ, क्योंकि उनका जिक्र जो है हुअल मिस्कु मा करर तहु यतज़व्वउ, वो तो मुश्क खुशबू है जिसे जितनी बार भी लगाया जाए उसकी खुशबू फैलती चली जाती है। बात समझ में आ गई। जिस कदर भी उसको दोहराया जाए, बार बार लौटाया जाए या बार बार उसको लगाया जाए तो वो फैलती चली जाती है। माना समझ में आ गया। कहते हैं ये शेर है इमाम शाफिई रहिमहुल्ला का, उन्होंने इमाम साहिब की शान में ये शेर जिक्र फरमाया। भाई फइन्नहु लौ फुतिहा नूनु नौमाना, इसलिए क्योंकि अगर फतहा दिया जाए नौमान के नून को, लौ फुतिहा नूनु नौमाना, नौमान इसके आखिर में अलिफ नून मजीदा तान भी हैं और यह आलम भी है, तो यह गैर मुनसरिफ है, लेकिन देखो शेर के अंदर आद जिक्र नौमानिल्लाना, इस पर कसरा और तनवीन पढ़ी गई। भाई अब अगर इस पर नौमाना लाना पढ़ देते यानी गैर मुनसरिफ भी इसको पढ़ दिया जाता तो भी वजन नहीं टूटना था, शेर का वजन बरकरार रहता, लेकिन शेर के अंदर वो रवानी ना रहती, सलासत ना रहती। तो कहते हैं फइन्नहू लौ फुतिहा नूनु नअमान मिन गैरि तन्वीन, अगर फतहा दे दिया जाता नअमान के नून को, यानी जो आखिर में नून है, मिन गैरि तन्वीन, बगैर तन्वीन के, यस्तकीमुल वज़्नु, तो भी वजन दुरुस्त रहता, वलाकिन यकउ फीह ज़िहाफ़ युख़रिजुहू अन सलासति, लेकिन उसके अंदर ज़िहाफ़ वाक़े होता जो इसको सलासत से निकाल देता, कमा यहकुम बिही सलामत तबई, जैसे कि इसका फैसला करती है सलामत तबा, तबीयत की सलामती इसका फैसला करती है, जिसकी तबीयत सलीम हो, जिसको अल्लाह ने ज़ौक दिया हो, वो फौरन सुनते ही शेर के वजन में थोड़ी सी भी खराबी हो, थोड़ी सी भी रवानी में कमी आ जाए, वो फौरन उसको महसूस कर लेता है। ये माना है कमा यहकुम बिही सलामत तबई, जैसे तबीयत की सलामती इसका फैसला करती है, यानी ये हुक्म लगा देती है। फइन कुलता जी, अब यहां से एक एतराज जिक्र करेंगे और फिर उसका जवाब। एतराज ये कि बात चल रही है जरूरत की, जरूरत शेरी, जिसका करना जरूरी होता है, उसके बगैर शेर का वजन ही सही नहीं रहता, और आप इसके दरमियान ज़िहाफ को भी जिक्र कर रहे हैं, हालांकि ज़िहाफ आपने अभी हमें खुद बताया कि आयद जिक्र नौमान लाना, अगर इस नौमान को गैर मुनसरिफ यानी फतहा के साथ भी पढ़ दिया जाता तो वजन तो न टूटता। तो मालूम हुआ कि ज़िहाफ से बचना जरूरी नहीं है, शेर का वजन तो फिर भी बरकरार है, शेर का वजन तो फिर भी बरकरार है, तो मालूम हुआ ज़िहाफ से बचना जरूरी नहीं, जब बचना जरूरी नहीं तो इसको लिए जरूरत के तहत आपने कैसे जिक्र कर दिया और इसको कैसे जरूरी करार दे दिया। तो आपको बतलाएंगे साहिब जामी कि भाई बाज़ ज़िहाफ़ात से बचना जरूरी होता है जब उससे बचा जा सके, क्योंकि ज़िहाफ की वजह से शेर की में सलासत जो है उसमें कमी आ रही थी, सलासत से वो शेर निकल रहा था, तो बाज़ औक़ात जब ज़िहाफ से बचना मुमकिन हो तो शुआरा के नजदीक वहां बचना जरूरी होता है, तो यह भी लिए जरूरत के तहत दाखिल है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं फइन कुलता लिहतराजु अनि ज़िहाफ़ लैसा बिज़रूरियिन, अगर आप ये कहें कि ज़िहाफ़ से बचना वो तो जरूरी नहीं है, फकैफ यश्मुलुहू क़ौलुहू लिज़रूरति, तो मातिन का कौल लिज़रूरत इसको कैसे शामिल हुआ, वो इसको कैसे शामिल, वो तो इस पर सादिक ही नहीं आ रहा। कुल ना, हम कहते हैं अल इख्तिराज़ अन बाज़ ज़िहाफ़ाती, के बाज़ ज़िहाफ़ात से बचना, इज़ा अमकाना अल इख्तिराज़ अनहु, जब उससे बचना मुमकिन हो, तो जरूरी यून इंद शुआरा, वो जरूरी होता है शुआरा के नजदीक। बाज़ ज़िहाफ़ात से बचना जब मुमकिन हो तो वह शुआरा के नजदीक जरूरी होता है। आगे देखिए भाई, कहते हैं वह अम जरूरतुल वाक़ियातुल रियायतिल काफियति फकमा फी कौलिही, और बाकी वो जरूरत जो वाक़े होती है रियायत काफिया की वजह से, फकमा फी कौलिही, जैसे कि इस कौल में है, इस शेर में है, सलामुन अला खैरिल अनामी व सैयदी, सलामुन अला खैरिल अनामी व सैयदी, हबीबी इलाहिल आलमीन मुहम्मदी, बशीरिन नदीरिन हाशिमीन मुकर्रमी, आतूफिर रऊफिम मन युसम्मा बि अहमदी। ये भी कहते हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो के अशआर हैं भाई। वो फरमाते हैं सलामुन अला खैरिल अनामी, सलामती हो अला खैरिल अनाम, अनाम कहते हैं मखलूक को भाई, मखलूकात, सलामती हो अला खैरिल अनामी, उन पर जो तमाम मखलूकात से अफजल हैं, बेहतर हैं, व सैयदी, और जो सरदार हैं, हबीबी इलाहिल आलमीना, वो तमाम जहानों के जो माबूद हैं उनके महबूब हैं, मुहम्मदिन यानी के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बशीरिन वो खुशखबरी देने वाले हैं, नजीरिन, नजीरिन का क्या तर्जमा, डराने वाले, अमूमन तलबा यही तर्जमा करते हैं, बेहतर तर्जमा इसका यह है नजीरिन, खबरदार करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, देखो अब कितना बेहतरीन तर्जमा हो गया, डराने वाले, और एक है खबरदार करने वाले, यानी अगर इस दीन की तरफ नहीं आओगे तो फिर आखिरत में बड़ा खौफनाक अंजाम होगा, तो खबरदार करने वाले हैं। तो नजीर इन खबरदार करने वाले हैं, हाशिमी इन हाशिमी हैं यानी कबीले बनो हाशिम से ताल्लुक रखते हैं, मुकर्रम इन मुअज्जज हैं, अतूफ इन शफकत करने वाले हैं, रऊफ इन मेहरबान हैं, मैं हुसम्मा भी अहमदी जो मौसूम है अहमद के नाम के साथ, यानी उनका नाम क्या है अहमद। अब देखो मकाम इस्तिशहाद है भी अहमदी, तो ये अहमद ये तो गैर मुनसरिफ है लेकिन यहां पर इस पर कसरा पढ़ा गया, किस लिए? रियायत काफिया के लिए भाई, क्योंकि अशार के अंदर देखो पीछे क्या आया था, हबीबी इलाहिल आलमीन मोहम्मदी, वहां पर भी दाल पर कसरा था और यहां पर भी फिर क्या होगा, दाल पर कसरा होगा, फिर ही रियायत काफिया होगी भाई। मैंने बताया काफिया किसे कहते हैं, शेर के आखिर में जो वजन आए तो उसको बरकरार रखने के लिए यहां कसरा जरूरी है। फइन्नहु लौ काल बि अहमदा बिल फतह, इसलिए क्योंकि अगर शायर जो है वो भी अहमदा कह देते फतहा के साथ, ला युखिल्लु बिल वजनी तो ये वजन में तो खलल ना डालता, वलाकिन्नहु युखिल्लु बिल काफियती लेकिन ये काफिये में खलल डाल देता। फइन्न हर्फ रवी फी साइरिल अबियाती, इसलिए क्योंकि हर्फ रवि जो है फी साइरिल अबियाती बाकी अशार के अंदर, अद्दालुल मकसूरतु वो दाले मकसूरा है। हर्फ रवि किसे कहते हैं, मैं पहले बयान कर चुका, शेर का आखिरी हर्फ जो है उसको क्या कहते हैं, हर्फ रवि, जिसकी तरफ उस कसीदे की निस्बत की जाती है। तो यहां देखो दाल है तो ये क्या कहलाएगा, कसीदा दालिया भाई। औल तनासुबी, या तनासुब की वजह से, गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ का हुक्म देना जायज है जरूरत की वजह से, औल तनासुबी या तनासुब यानी मुनासिबत की वजह से, देखिए खुद माना बयान कर रहे हैं, अय वजूज सर्फ गैर मुनसरिफी लियहसुल तनासुब बैनहू व बैनल मुनसरिफी, और गैर मुनसरिफ की सर्फ जायज है, लियहसुल तनासुब ताकि तनासुब हासिल हो जाए, बैनहू व बैनल मुनसरिफी इस गैर मुनसरिफ और मुनसरिफ के दरमियान, लिअन्न रियायत तनासुबी बैनिल कलिमाती अमरुन मुहिम मुन इंदहुम, इसलिए क्योंकि कलिमात के दरमियान मुनासिबत की रियायत रखना अमरुन मुहिम मुन ये अहम चीज है, इंदहुम अरबों के नजदीक, अरबों के नजदीक कलिमात में भी क्या होनी चाहिए, मुनासिबत होनी चाहिए, यह वाजिब तो नहीं है लेकिन अहम है उनके नजदीक भाई। वह इल्लम यसिल इला हद जरूरती, अगरचे ये हद जरूरत तक ना पहुंचा हो, यानी जरूरी तो नहीं लेकिन अहम जरूर है भाई। तो वह इल्लम यसिल, ये इनसे पहले व आया, ये इन वसलिया है भाई, अगरचे के साथ इसका तर्जमा किया जाता है, तो कहते हैं ये उनके नजदीक अहम चीज है। व इल्लम यसिल इला हद जरूरती, अगरचे जरूरत की हद को नहीं पहुंचता, मिसलु सलासिला व अगलाला जैसे सलासिला व अगलाला। अब देखो मैंने बतला दिया कि अगलालन पर तनवीन आ रही थी तो सलासिलन जो है इस पर भी तनवीन लाई गई मुनासिबत की वजह से, हालांकि सलासिल ये गैर मुनसरिफ है भाई, और सलासिल ये जंजीरों को कहते हैं, जंजीरों को, और अगलाल ये तौक भाई जो गले में मुजरिमों के गले में तौक डाले जाते हैं जिसके साथ उनके हाथों को बांध दिया जाता है गले के साथ, तो सलासिलन व अगलाला। तो हैसु सुरिफा सलासिलन, इस हैसियत से कि सुरिफा सलासिलन लितनासुबिल मुनसरिफिल लदी यलीही, कि सलासिलन जो है इसको मुनसरिफ किया गया, लितनासुबिल मुनसरिफी उस मुनसरिफ की मुनासिबत की वजह से, अल्लदी यलीही जो इसके साथ मिला हुआ है, जो इसके साथ वाके है, आनी अगलाला यानी के अगलालन। फकौलुहु सलासिलन व अगलाला जी, अब देखिए जरा मतन ये जो मिसाल पे नजर रखो, देखो ये सलासिलन ये है मिसाल उस गैर मुनसरिफ की जिस पर क्या पढ़ा गया, जिस पर तनवीन पड़ी गई, यानी इसको मुनसरिफ वाला हुक्म दिया गया, और अगलालन ये मिसाल है उस इसम की जिसकी वजह से गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ा गया। बात समझ में आ गई? तो ये सलासिलन व अगलाला, आप ये ना समझें ये दो मिसालें हैं दोनों गैर मुनसरिफ हैं, नहीं बल्कि दरअसल इसमें दोनों इसम आ गए, एक वो गैर मुनसरिफ जिसको क्या पढ़ा गया मुनसरिफ, और एक वो मुनसरिफ जिसकी वजह से इस गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ा गया। तो ये दोनों की मिसाल है। तो साहिबे काफिया दोनों की मिसाल देना चाहते थे, सिर्फ सलासिला कह देते तो ये इस गैर मुनसरिफ की तो मिसाल बन जाती, लेकिन जिस सिस्म की वजह से इसका हुक्म बदला है उसकी मिसाल ना रहती। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं फकौलुहु सलासिलं व अगलालन मिसालु लिमजमूई गैरिल मुनसरिफ, सलासिलं व अगलाला ये मिसाल है लिमजमूई गैरिल मुनसरिफ, मजमूए की उस गैर मुनसरिफ का मजमूआ, अल्लजी सुरिफा जिसको मुनसरिफ किया गया, वल मुनसरिफी और उस मुनसरिफ का, अल्लजी सुरिफा गैरुल मुनसरिफी लितनासुबिही के गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ा गया लितनासुबिही इसकी मुनासिबत की वजह से। इबारत समझ में आई। फिर देखो फकौलुहु सलासिलं व अगलालन, मुसन्निफ का कौल सलासिलं व अगलालन जो है मिसालुन लिमजमूई गैरिल मुनसरिफी, आगे आ रहा है वल मुनसरिफी, ये गैर मुनसरिफ और मुनसरिफ दोनों के मजमूए की, यूं कहो मजमूए दोनों की इकट्ठी मिसाल है, दोनों की मजमूई मिसाल है किसके, गैर मुनसरिफ और मुनसरिफ की। गैर मुनसरिफ कौन सा जिसको मुनसरिफ पढ़ा गया, और मुनसरिफ कौन सा जिसकी वजह से मुनसरिफ पढ़ा गया। भाई यह मानना है मिसाल उन मजमूए गैरिल मुनसरिफी, यह मिसाल है इकट्ठी उस गैर मुनसरिफ की, अल्लजी सुरिफा जिसको मुनसरिफ पढ़ा गया, वल मुनसरिफी और उस मुनसरिफ की, अल्लजी सुरिफा गैरुल मुनसरिफी लितनासुबी ही कि जिसकी मुनासिबत से गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ा गया। सलासिलन व अगलालन ये दोनों की मिसाल है, वो गैर मुनसरिफ जिसको मुनसरिफ पढ़ा गया इसमें वो भी है, और इसके अंदर वो इसम भी है जिसकी वजह से गैर मुनसरिफ को, जिसके साथ मुनासिबत पैदा करने के लिए गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ पढ़ा गया। भाई तो कहते हैं वह मा यकूमु मकामहुम अलजमउ व अलिफत तानीसी, और वो इल्लत जो दो इल्लतों के कायम मकाम है, वो उनमें से एक जो है वो जमा है और दूसरी जो है अलिफत तानीस, तानीस के दो अलिफ हैं। भाई ये देखो वह अलिफत तानीस असल में क्या था, अलिफानी नून इजाफत की वजह से गिर गया, अलिफत तानीस, तानीस के दो अलिफ हैं। इबारत समझ में आ रही है। ये जो तानीस है, तानीस लफ्जी की तीन अलामतें हैं भाई, एक ताय मरबूता है यानी गोलता, एक इसी तरह अलिफ मकसूरा है, एक अलिफ ममदूदा है। अलिफ ममदूदा वो है जिसमें अलिफ के बाद हमजा आता है, यह है अलिफ ममदूदा। और इसमें याद रखना ये दर असल दो अलिफ थे भाई, दो अलिफ थे और फिर दूसरे को हमजा से बदल दिया गया, और ये जो दूसरा अलिफ जो हमजा से बदला है असल में ये तानीस के लिए है, पहला अलिफ तानीस के लिए नहीं। तो ये अलिफ जो हमजा से बदल गया ये है तानीस की अलामत, और इससे पहले चूंकि अलिफ है और अलिफ के बाद जब हमजा आए तो उस अलिफ को खूब लंबा करते हैं, खींचते हैं, तो इसलिए उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। तो अलिफ मकसूरा वो एक अलिफ है और अलिफ ममदूदा हकीकत में दो अलिफ थे, और उसमें से जो दूसरा था वो किससे बदल गया, हमजा से। और दरअसल ये तानीस की अलामत है, ये जो पहला अलिफ है हमजा से माकबल में जो अलिफ है ये तानीस की अलामत नहीं है भाई। तो ये अलिफा तानीस से ये दो अलिफ मुराद हैं तानीस वाले, यानी अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। अलिफा तानीस ये अलिफा मुजाफ है और अतानीस मुजाफिले है। अलिफा तानीस जी एराब बताइए, अलिफा ये क्या है, मरफू है, मरफू है, खबर बन रहे हैं ना, अलजमउ व अलिफा तानीस वमा यकूमु मकामहुमा, ये है मुबतदा, ये मा क्या है, मुबतदा है, और यकूमु मकामहुमा ये उसका सिला है मौसूल का, मौसूल सिला मिलकर मुबतदा, और अलजमउ व अलिफत तानीस ये मातूफुन अले अपने मातूफ से मिलकर ये क्या बनेगा, खबर, और खबर क्या होती है, मरफू। तो ये अलिफत तानीस इसका एराब मुझे बतलाइए भाई, अलिफा मरफू, मरफू है, और कौन सा मरफू है, लफ्जन है, तकदीरन है या महल्लन है, व अलिफत तानीस जी अलिफ शाबाश, ये तकदीरन है। अलिफा देखो, अलिफत तानीस असल में क्या था, अलिफानी, तो ये तस्निया है और रफा किसके साथ आता है, अलिफ के साथ, और ये अलिफ अभी मौजूद है अलिफानी, लेकिन जब इसकी इजाफत कर दी अत्तानीस की तरफ, अब कैसे पढ़ेंगे, अलिफत तानीस, वो अलिफ इज्तिमाए साकिनैन की वजह से गिर गया, तो अब उस अलिफ पर आप तलफुज कर रहे हैं, नहीं तलफुज कर रहे, तो मालूम हुआ ये अब क्या है, मरफू है, ये अलिफा मरफू तकदीरन है भाई, तकदीरन है। जैसे पीछे मिसाल आई थी, जानी अबुल कौम, रअयतु अबल कौम, मररतु भी अबिल कौम, वहां पर भी वो वाव अलिफ और या इज्तिमाई साकिनैन से गिर गए थे, तो एराब तकदीरी था भाई। अब देखिए भाई किताब पर कहते हैं वमा यकूमु मकामहुमा, और मा से क्या मुराद है, अयिल इल्लतुल वाहिदतु, देखो मा की तफसीर की साहिब जामी ने, अयिल इल्लतुल वाहिदतु, वो एक इल्लत, देखो मा की तफसीर मारिफा के साथ की, मालूम हुआ ये मा कौन सा है, मा मौसूला है, मौसूफा नहीं भाई, वजह ये कि ये मुब्तदा बन रहा है और मुब्तदा में असल है कि वो मारिफा होना चाहिए, इसलिए इसको मां मौसूफा नहीं बनाया बल्कि मां मौसूला बनाया, क्योंकि मां मौसूला मारिफा होता है। तो कहते हैं वमा यकूमु मकामहुमा अयिल इल्लतुल वाहिदतुल्लती तकूमु मकाम अल इल्लतैन मिनल इलल तिसई, यानी वो एक इल्लत जो दो इल्लतों के कायम मकाम होती है, मिनल इलल तिसई, नौ इल्लतों में से। फिर सुनो तर्जमा, अल इल्लतुल वाहिदतुल्लती तकूमु मकाम अल इल्लतैन मिनल इलल तिसई, तर्जमा आखिर से देखो, उन नौ इल्लतों में से वो एक इल्लत जो दो के कायम मकाम होती है, उन नौ इल्लतों में से वो एक इल्लत जो दो इल्लतों के कायम मकाम होती है, इल्लतानी, वो दो इल्लतें हैं भाई, ये इल्लतानी, ये खबर है भाई मा यकूमु मकामहुमा की, नौ इल्लतों में से वो एक इल्लत जो दो के कायम मकाम होती है, इल्लतानी, वो दो इल्लतें हैं भाई, दो इल्लतें हैं। तो बतलाना ये चाहते हैं कि वमा यकूमु मकामहुमा ये है मुबतदा, और इसकी खबर अलजमउ व अलिफा तानीस को न बनाएं, बल्कि इसकी खबर किसको बना दो, इल्लतानी मुकर्ररतानी, इसको खबर बना दें, इसको खबर बना दें, और वो दो इल्लतें हैं मुकर्ररतानी जो मुकर्रर हैं, मुकर्ररतानी भाई वो दो इल्लतें जो मुकर्रर हैं, ये मुकर्ररतानी का लफ्ज इसलिए लाए साहिबे जामी के बतलाना ये चाहते हैं, ये यूं कहें एक एतराज का जवाब देना चाहते हैं, एतराज ये कि दो इल्लतें जब इसम में आती थीं तो इसम में दो फरइयतें आती थीं और उसकी वजह से वो फेल के मुशाबे होता था, फेल में भी कितनी फरइयतें, दो फरइयतें, तो अगर ये एक इल्लत जो है जो दो इल्लतों के कायम मकाम है ये जब आएगी तो फिर तो इसम में एक फरइयत आई, क्या आई, एक फरइयत की वजह से तो इसम फेल के मुशाबे नहीं बनेगा भाई, कम से कम कितनी फरइयतें आए, दो। तो आपको बतला रहे हैं कि ये दो इल्लतें भी ऐसी हैं जिनमें तकरार है भाई, इनमें क्या है, तकरार है। देखो आगे चलकर आपको बतलाएंगे कि ये जो जमा मुंतहल जुमुआ का सीगा है ये दूसरे दर्जे पे आता है, याद रखो अरबी जुबान में एक लफ्ज की एक जमा आती है, फिर आगे उस जमा की जमा आती है, फिर कभी कभार आगे फिर उस जमा की जमा आती है, तो ये तीन तीन चार चार तक ये सिलसिला चला जाता है कि पहले मुफरत की एक जमा आई, फिर आगे जमा की जमा आई, फिर उस जमा की आगे जमा आई, तो ये तीन तीन चार चार तक बाजों का सिलसिला चला जाता है। तो ये जो जमा मुंतहल जुमुआ है ये अमूमन दूसरे दर्जे पर आती है, किसमें, दूसरे दर्जे पर आती है, पहले उसकी एक जमा आई, मसलन कल्बुन, कल्बुन छोटे काफ के साथ, इसका माना है कुत्ता, इसकी जमा आती है अकलुब, अकलुब, फिर उस अकलुब की जमा आगे आती है अकालिब भाई, तो देखो जमा की जमा आई और अकालिब, ये कौन सा सीगा है, जमा मुंतहल जुमुआ वाला, और कितने नंबर पर आया, दूसरे नंबर पर, तो यूं समझो गोया जमा में तकरार आ गया, दो दफा जमा आ गई, जब दो दफा जमा आ गई तो गोया दो फरइयतें आ गईं, ये दो जमाएं आ गईं, तो जमा में तकरार आया तो यूं समझो एक फरियत नहीं है बल्कि दो फरियतें हैं भाई। बात समझ में आ गई? तो जब दो फरियतें आ गईं तो अब ये दो इल्लतों के कायम मकाम बन गया भाई। तो कहते हैं इल्लतानी मुकर्ररतानी, उन नौ में से वो एक इल्लत जो दो के कायम मकाम हो, इल्लतानी वो दो ऐसी इल्लतें हैं, मुकर्ररतानी जो मुकर्रर होती हैं यानी जिनमें तकरार होता है, कामत कुल्लु वाहिदतिम मिन्हुमा मकामल इल्लतैनी, इनमें से हर एक इल्लत जो है वो दो इल्लतों के कायम मकाम है, ले तकरारी हिमा इनके तकरार की वजह से, इनके तकरार की वजह से भाई, इनके तकरार की वजह से, इहदाहुम अलजमउ उनमें से एक क्या है, उन दो इल्लतों में से एक जमा है, वो जमा अलबालिगु इला सीगति मुंतहल जुमुई जो पहुंचने वाली है मुंतहल जुमु के सीगे तक, वो जमा जो कहां तक पहुंच गई, जमा मुंतहल जुमुआ तक, यानी पहले मुफरत की एक जमा आई फिर उसके बाद वो कहां दोबारा जमा आकर कहां तक पहुंच गई, जमा मुंतहल जुमुआ तक भाई। فإنه قد تكرر فيه الجمعية حقيقة, इसलिए क्योंकि तहकीक इसके अंदर तकरार आ गया जमईयत का, हकीकतन हकीकतन जमा होने का तकरार आ गया, का अकालिबा व असाविरा व अनाईमा, अकालिब मैंने बतला दिया ये कल्ब की जमा है, कल्ब की जमा पहले क्या आती है अकलुब और फिर उसकी जमा अकालिब, तो ये जमा मुंतहल जुमुआ है और दूसरे दर्जे में आई है, वो गोया जमा का तकरार आ गया, जब जमा का तकरार आया तो ये दो सबबों के कायम मकाम हो गया भाई। वह असाविरा, असाविर जमा है सिवार उनकी, और सिवार कंगन को कहते हैं, सिवार कंगन को कहते हैं, और सिवार की जमा है अस्वीरतुन और फिर उस अस्वीरतुन की जमा असाविर आती है भाई। तो देखो ये भी दूसरे दर्जे पर आई। व असाविरा व अनाईमा, जी अनाईम जमा है नाम की, नाम मवेशी को कहते हैं भाई, ये गाय बैल बकरी ऊंट वगैरह, तो ये मवेशी इनको क्या कहते हैं नाम, इस नाम की जमा अनाम भाई और फिर उस अनाम की जमा अनाईम। तो देखो जमा मुंतहल जुमुआ आया और दूसरे दर्जे में आया, तो गोया इसमें तकरार जमा है, तो ये दो इल्लतों के कायम मकाम है। तो कभी कभार जमईयत का इसके अंदर हकीकतन तकरार आता है, पहले एक जमा आती है और फिर जमा मुंतहल जुमुआ आता है, और कभी हकीकतन तो दूसरे दर्जे में यह जमा नहीं आती, पहले ही दर्जे में आ जाती है, जैसे मस्जिद की जमा मसाजिद, देखो अब फौरन पहले ही दर्जे में जमा मुंतहल जुमुआ आ गई, या मिसबाह की जमा मसाबीह, फौरन पहले ही दर्जे में मुंतहल जुमुआ, जमा मुंतहल जुमुआ आ गई। कहते हैं भाई ये भी हुक्मन उसी के दर्जे में है क्योंकि इसकी सूरत और वजन बिल्कुल उस जैसा है, तो लिहाजा इसका भी वही हुक्म, उस वहां तकरार जमईयत हकीकतन थी तो हुक्मन यहां भी तकरार जमईयत को समझा जाएगा, तो यहां पर भी तकरार जमईयत का हुक्म लगा दिया जाएगा, अगरचे हकीकतन नहीं लेकिन हुक्मन है भाई। औ हुक्मन या तकरार जमईयत उसमें होगा हुक्मन, कल जुमुअल मुआफकत लहाफी अददिल हुरूफ वल हरकात वस सकनाति, जैसे कि वो जमाएं जो इन जमाओं के मुआफिक हैं अदद हुरूफ में भी, हुरूफ की तादाद में भी, वल हरकात वस सकनात और हरकात और सकनात में भी, देखो मसाजिद असाविर, देखो हुरूफ भी बराबर हैं और हरकात और सकनात भी एक जैसी हैं बराबर हैं, और अनाईम और इसी तरह क्या है मसाबीह, तो मसाबीह जो है वो हुरूफ की तादाद में भी और हरकात और सकनात में भी अनाईम की तरह है, का मसाजिद व मसाबीह, जैसे कि मसाजिद और मसाबीह है, वसानियतुहुमत्तानीसु लाकिल्ला मुतलकन बल बाजु अक्सामिही, और उन इल्लतों में से दूसरी इल्लत जो है अत्तानीस, वो तानीस है लेकिन ला मुतलकन, लेकिन मुतलकन हर तानीस नहीं बल बाज़ु अक्सामी ही, बल्कि उसके बाज़े अक्साम हैं, वह हुआ अलिफ तानीस और वो तानीस के दो अलिफ हैं भाई, अल मकसूरतु वल ममदूदतु, मकसूरा और ममदूदा, दो अलिफ तानीस वाले, एक अलिफ मकसूरा और एक अलिफ ममदूदा। मैंने कल आपको बतलाया था भाई कि एक चीज का इजमालन जिक्र आए और फिर उसकी तफसील आ जाए तो वहां तीन तरह पढ़ना जायज है, रफा भी, नसब भी और जर भी। यहां पर भी देखो, वह हुआ अलिफत तानीस, वो तानीस के दो अलिफ हैं भाई, अलिफत तानीस, इजमालन जिक्र आ गया, तफसील नहीं बयान की कि एक ममदूदा होता है और एक मकसूरा, फिर आगे तफसील बयान कर दी कि तानीस के दो अलिफ कौन से हैं, अल मकसूरतु वल ममदूदतु, तो अल मकसूरतु वल ममदूदतु, ये इजमाल के बाद तफसील आ गई। तो इसमें अब तीन वजहें पढ़ना जायज हैं, किस तरह, या तो इसको बदल बना दो, अलिफत तानीस, तानीस के दो अलिफ, तो ये अलिफा से बदल बनेगा और वो मरफू है, तो अल मकसूरतु वल ममदूदतु, ये बदल भी मरफू होगा। या इसको आनी फेल के लिए मफूल बनाओ, आनिल मकसूरता वल ममदूदता, तो इस सूरत में ये मनसूब होगा। या तीसरी तरकीब ये कि इसको खबर बनाओ, इसके लिए मुब्तदा महजूफ निकाल लो और फिर एक ही मुब्तदा सबके लिए निकाल लो, अयहुमल मकसूरतु वल ममदूदतु, वो दो अलिफ क्या हैं, मकसूरा और ममदूदा हैं, तो हुमा ये है मुब्तदा जो अलिफ तानीस की तरफ राजे है, और अल मकसूरतु वल ममदूदतु उसकी खबर, या दोनों में से हर एक के लिए अलग अलग मुब्तदा निकाल लो। कैसे, इहदाहुमल मकसूरतु वसानियतुहुमल ममदूदतु, अल मकसूरतु मुअन्नस है ना, तो इसके लिए मुब्तदा भी कैसा निकालो, मुअन्नस, इहदाहुमा उन दोनों में से एक, किन दोनों में से, अलिफ में, उन दो अलिफों में से एक जो है अल मकसूरतु अलिफ मकसूरा है, वसानियतुहुमल ममदूदतु और दूसरा ममदूदा है। तो कहते हैं तानीस के दो अलिफ यानी अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा, ऐ कुल वाहिदतिम मिनहुमा, यानी इनमें से हर एक, बतलाना ये चाहते हैं तानीस के दो अलिफ इकट्ठे जिक्र किए, तो ये ना समझना कि ये दोनों इकट्ठे होंगे तो फिर ये दो सबबों के कायम मकाम होंगे, बल्कि दोनों में से हर एक अलग अलग दो सबबों के कायम मकाम है, ये माना है। ऐ कुल वाहिदतिम मिनहुमा, यानी उन दोनों में से हर एक जो है वो दो सबबों के कायम मकाम है, का हुबला व हमरा, जैसे हुबला और हमरा भाई, लि अन्नहुमा लाजिमतानी। अब यहां से वजह जिक्र कर रहे हैं कि ये तानीस के जो दो अलिफ हैं ये दो सबबों के कायम मकाम क्यों हैं, तो आपको बतलाएंगे कि इनको कलीमा के साथ ही वजा किया गया है। जब इस हुबला को वजा किया गया था तो अलिफ के साथ वजा किया गया था, और हमरा जो है जब इसको वजा किया गया था तो इस अलिफ ममदूदा के साथ वजा किया गया था, और ये इनके साथ लाजिम है, जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि वजा ही ऐसी है, वजह ही एक चीज वजह के एतबार से ही उसके साथ है, तो इसको अब जुदा नहीं कर सकते। चुनांचे हुबला, इससे ये अलिफ जुदा नहीं होता। अरब हुबलुन कहीं इस्तेमाल कर लें, नहीं भाई, हमने आज तक नहीं सुना, मालूम हुआ ये अलिफ कभी भी हुबला से जुदा नहीं होता। और इसी तरह हमरा, इसमें से हुमरुन को अलहदा इस्तेमाल कर लें अरब, हमने कभी आज तक नहीं सुना, तो मालूम हुआ ये दोनों अलिफ वजा के एतबार से ही इस कलीमे के साथ लाजिम है। तवज्जो है, तो एक तो आ गई इस कलीमे में तानीस, और दूसरा सबब आ गया लुजूम तानीस, तानीस का इसके साथ लाजिम होना, तानीस का, तो तानीस का इसके साथ लाजिम होना, इसको एक और तानीस के दर्जे में उतार लिया, तो दो तानीसें गोया आ गई भाई। कितनी तानीस, दो तानीसें, जब दो तानीसें आई तो दो फरइयतें आ गईं, तो अब इसम किसकी तरह हो गया, फेल की तरह हो गया। तो दो सबब इसमें क्या, तानीस और लुजूम तानीस है, तानीस का लाजिम होना, तो उसको भी एक तानीस ही के दर्जे में उतार लिया। तो कहते हैं का हुबला व हमरा, आ जैसे हुबला और हमरा, लि अन्नहुमा लाजिमतानि लिल कलिमति वज़अन, इसलिए क्योंकि ये दोनों अलिफ जो हैं ये कलिमा के साथ लाजिम है, वज़अन बाय एतबार वजा के, ला तुफारिकानिहा असलन, ये जुदा होते ही नहीं, असलन ऐ कतअन, कती तौर पर जुदा नहीं होते, फला युकालु फी हुबला हुबलुन वला फी हमरा अहुमरुन, लिहाजा हुबला में हुबलुन नहीं कहते और हमरा में हुमरुन नहीं कहते, यानी इस्तेमाल नहीं करते। फयुजअलु लुज़ूमुहुमा लिलकलिमति बिमंज़िलति तानीसिन आखरा, तो इन दोनों का कलीमा के साथ जो लुजूम है उसको एक और तानीस के दर्जे में कर लिया गया। तर्जमा समझ में आया? फयुजअलु लुज़ूमुहुमा लिलकलिमति बिमंज़िलति तानीसिन आखरा, तो इन दोनों का कलीमा के साथ जो लुजूम है उसको एक और तानीस के दर्जे में कर लिया गया। फसारत तानीसु मुकर्ररन, तो तानीस मुकर्रर हो गई यानी दो दफा आ गई। बेखिलाफ ताई, यहां तक बात समझ में आ गई। इसीलिए ऊपर साहिब जामी ने क्या फरमाया था, इल्लतानी मुकर्ररतानी, दो ऐसी इल्लतें जो मुकर्रर हैं यानी जिनमें तकरार है। तो जमा मुंतहल जुमुआ में भी तकरार, चाहे कभी हकीकतन होगा कभी हुक्मन होगा, तो जमईयत का उसमें तकरार है। और अलिफ ममदूदा और अलिफ मकसूरा जो तानीस वाले हैं उनमें भी तकरार है, तो गोया तकरार तानीस है वहां पर। बेखिलाफ इताई, अब यहां से एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, सवाल का जवाब कि ये अलिफ तानीस इनको दो सबबों के कायम मकाम किया, ये ता जो है वो भी तानीस की अलामत है, उसको दो सबबों के कायम मकाम क्यों नहीं किया? तो अब बतलाने लगे हैं कि जो ता है ये वजा के एतबार से कलीमे के साथ नहीं होती, बल्कि यह तो सिर्फ मुजक्कर मुअन्नस में फर्क करने के लिए लाई जाती है, यही कायमुन मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करना है तो ता लाने की कोई जरूरत नहीं, यही कायमुन आप मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो साथ ता ले आओ। तो यह ता किस लिए है? मुजक्कर और मुअन्नस में फर्क करने के लिए साथ मिलाई जाती है, यह बाएतबार वजा के कलीमे के साथ लाजिम नहीं है। तो कहते हैं बिखिलाफ ताई, बखिलाफ ता के, फइन्नहा लैसत लाज़िमतन लिलकलिमति बिहसबी असलिल वज़ई, क्योंकि ये जो है कलीमा के साथ लाजिम नहीं है असल वजा के एतबार से। फइन्नहा वुज़िअत फारिक़तन बैनल मुज़क्कर वल मुअन्नस, इसलिए क्योंकि इस ता को वजा किया गया है फर्क करने के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस के दरमियान। फलौ आरज लुजूम बि आरिज कल अलमियति मसलन लम यकवा कुवतल लुजूम वज़ईये, इबारत पे नजर है, लम यकवा कुवतल लुजूम वज़ईये, कविया यकवा का माना कुवत वाला होना, ताकतवर होना, और कुवतन आगे जो आ रहा है यह कुवतन इसी का मस्दर है भाई, वो मस्दर जो माकबल फेल के माना में हो उसको क्या कहते हैं, मफूल मुतलक। तो ये मफूल मुतलक है भाई कुवतल लुजूमी, और ये मफूल मुतलक आपने पढ़ा है कि ये कभी तशबीह के लिए आता है। जलस तो जलसतल कारी, मैं किसकी तरह बैठा, कारी की तरह बैठा, तो ये किस्म और नौ बतलाने के लिए आता है। तो यहां पर भी कुवतल लुजूमिल वज़ई ये तशबीह के लिए है, वज़ई लुजूम जैसी कुवत, वज़ई लुजूम जैसी कुवत। भाई देखिए भाई, फलौ आरज़ल लुजूम, फलौ आरज़ल लुजूम बी आरिज़िन, यहां से एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। सवाल यह कि आपने क्या कहा, यह ता मुजक्कर और मुअन्नस में फर्क करने के लिए लाई जाती है और कलीमे के साथ लाजिम नहीं होती, कभी जुड़ जाती है कभी जुदा हो जाती है। हम आपको दिखाते हैं कि कभी कभार यह ता कलीमा के साथ लाजिम हो जाती है, जैसे कायमतुन, कायमतुन ये किसी का नाम रख दें, अब यह ता लाजिम हो गई क्योंकि अलम में कोई तब्दीली नहीं की जाती, अब यह कायमतुन से यह ता जुदा नहीं हो सकती, तो इस ता को भी क्या करना चाहिए, दो सबबों के कायम मकाम करार देना चाहिए। तो आपको बतलाएंगे कि नहीं भाई, असल एतबार वज़ अव्वल का है, वज़ अव्वल के एतबार से यह सिर्फ मुजक्कर मुअन्नस में फर्क करने के लिए है, यह कलीमे के साथ लाजिम नहीं है। और ये जो आलम बनाया गया तो आलम के अंदर भी वजा होती है, लेकिन ये वजाए सानी है भाई, किसी का नाम रख दिया गया तो ये दूसरी मर्तबा गोया उस लफ्ज को वजा किया गया, और एतबार किसका है, वजाए अव्वल का है। तो इस अलमियत की वजह से भी ये ता लाजिम हो गई कलीमा के साथ, लेकिन ये इसका लुजूम इतना कवी नहीं है जो ऐसा लुजूम किसमें था कवी, वजाए अव्वल में जैसा कवी था। तो कहते हैं फलौ आरज़ल लुजूम, अगर लुजूम आरिज हो जाए, बि आरिज़िन किसी आरिज की वजह से, कल आलमियती जैसे क्या है, जैसे कि आलमियत है यानी आलमियत अलम होना, मसलन मिसाल के तौर पर, तो कहते हैं लम यकवा कुवतल लुजूम इल वज़ई, तो ये कवी नहीं होता कुव्वत लुजूम वज़ई, लुजूम वज़ई की कुव्वत की तरह, जैसे एक लुजूम वज़ा के एतबार से होता है वो बड़ा कवी लुजूम है, वो जुदा ही नहीं होता, और एक लुजूम आया अलमियत की वजह से ये उस जैसा कवी लुजूम नहीं है, तो इसको उसका हुक्म नहीं दिया जा सकता। तो ये माना है लम यकवा, कविया यकवा का माना कुव्वत वाला होना, ताकतवर होना, लम यकवा कुव्वत लुजूम वज़ई, तो ये लुजूम वज़ई की तरह ताकतवर नहीं हो सकता। बात अच्छी तरह समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।